नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। भारतीय एयरलाइनों ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द की। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। इसरो ने कहा, भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में 9 प्रमुख विश्व रिकॉर्ड हासिल किए, आगामी वर्षों में 8 से 10 और रिकॉर्ड बनाने की राह पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता के सफल परिणाम की आशा व्यक्त की। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में शीर्ष हमास नेताओं की हत्या के प्रयास की पुष्टि की। और क्रिकेट में अफगानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में हांगकांग को 94 रन से हराया। आज दुबई में भारतीय टीम मेजबान यूएई से अपना पहला मैच खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नेपाल में हिंसा हृदय विदारक है। उन्होंने नेपाल में युवाओं की जानहानि पर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि नेपाल में स्थिरता, शांति और समृद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति के प्रयास को समर्थन देने की अपील की। इस बीच नेपाल में आंदोलनकारी युवाओं और सेना के बीच मध्य रात्रि में जंगी अड्डा स्थित सैन्य मुख्यालय में बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार आंदोलनकारी युवाओं के विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों ने देर रात सेना प्रमुख अशोक राज सिग्डेल से मुलाकात की और अपने मुद्दे उनके समक्ष रखे। सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने इसे किसी औपचारिक वार्ता की जगह युवाओं के विचारों को समझने का प्रारंभिक प्रयास बताया। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं नेपाल से हमारी संवाददाता श्वेता सिंह से। श्वेता, आपके पास क्या ताजा जानकारी है?
पर देखिए, रात्रि 10 बजे से नेपाली आर्मी ने पूरे नेपाल में कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया है और उन्होंने मध्य रात्रि को जो जेंजी प्रतिनिधि हैं उनको बुलाया था बातचीत करने के लिए, ताकि नेपाली आर्मी उनके पक्ष को समझ सके कि वो क्या चाहती है। और उसके उपरांत आप देखें, काठमांडू में उपद्रव मचाने वाले जितने लोग थे जिन्होंने इस परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाया, उनमें 26 लोगों को आर्मी ने गिरफ्तार किया है, जिन्होंने भाटभटेनी में, होटल हयात में और वाणिज्य बैंक में लूटपाट की थी। जी
श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद ताजा जानकारी देने के लिए। एयर इंडिया और इंडिगो सहित कई एयरलाइनों ने कल काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी। नेपाल की राजधानी में बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। नेपाल एयरलाइंस ने भी कल दिल्ली से काठमांडू जाने वाली अपनी उड़ान रद्द कर दी थी। एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने भी आज के लिए काठमांडू आने जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। सरकार ने भारतीय नागरिकों को स्थिति ठीक होने तक नेपाल की यात्रा न करने की सलाह दी है। सरकार ने नेपाल में भारतीय नागरिकों को अपने वर्तमान निवास स्थानों पर ही रहने, सड़कों पर जाने से बचने और पूरी सावधानी बरतने को कहा है। किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर सरकार ने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 9779802881 और 9779801032614। नंबर एक बार फिर सुन ले, 9779806086 और 9779801032614। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया है। श्री राधाकृष्णन ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। जीत के बाद श्री राधाकृष्णन ने मीडिया को बताया कि विपक्षी गठबंधन ने कहा था कि ये चुनाव वैचारिक लड़ाई है, लेकिन मतदान के पैटर्न से हम समझते हैं कि राष्ट्रवादी विचारधारा विजयी हुई है।
Every post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. It is the other side camp said it is an ideological fight, but from the voting pattern we understand the nationalistic ideology has overwhelmingly victorious.
वहीं विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी ने चुनाव में हार के बाद कहा है कि वे विनम्रता पूर्वक परिणाम स्वीकार करते हैं. उन्होंने श्री राधाकृष्णन को नई भूमिका के लिए शुभकामनाएं दी. सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री राधाकृष्णन ने INDI गठबंधन के प्रत्याशी और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोटों से हराया. मतगणना के बाद राज्यसभा के महासचिव और रिटर्निंग ऑफिसर पीसी मोदी ने ये जानकारी दी.
आई पीसी मोदी द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2025 हियर बाय डिक्लेयर दैट श्री सीपी राधाकृष्णन जलभूषण राजभवन बालकेश्वर रोड मलबार हिल मुंबई हैज बीन ड्यूली इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया.
श्री राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी. सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री राधाकृष्णन का दशकों का सार्वजनिक जीवन में समृद्ध अनुभव देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी. गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उन्हें बधाई दी. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष में खोज के क्षेत्र में 9 बड़े विश्व रिकॉर्ड कायम किए हैं और आगामी वर्षों में 8 से 10 और कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है. नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री नारायण ने चंद्रयान मिशन से लेकर मंगल ऑर्बिटर मिशन और क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी सहित भारत की विभिन्न उपलब्धियों पर बातचीत की. श्री नारायण ने बताया कि इसरो की योजना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आने वाले समय में 8 से 10 और विश्व रिकॉर्ड कायम करने की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से दीपावली तक अगली पीढ़ी के वस्तु और सेवा कर GST सुधारों की घोषणा की. 3 सितंबर को GST परिषद ने आम आदमी पर ध्यान केंद्रित करते हुए दरों को युक्ति संगत बनाने को स्वीकृति दी. आज हम हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए किए गए GST सुधारों की बात कर रहे हैं.
सरकार ने हस्तशिल्प वस्तुओं पर GST दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है. इस कदम से कारीगरों और पारंपरिक शिल्प क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा. इस कदम का उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प को उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुलभ और वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है. इस कदम से सरकार का लक्ष्य भारत की सांस्कृतिक अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना, ग्रामीण आजीविकाओं को सहारा देना और सदियों पुरानी शिल्प परंपराओं को संरक्षित करना है. चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वित्त सलाहकार प्रवीर साहू ने इस GST सुधार का स्वागत किया.
मध्यम वर्ग को बहुत राहत मिलेगी कि जो पहले टैक्स की वजह से बहुत सारे लोग उसको खरीदने से अपने आप को दूर रखते थे, वैसे इंडस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा लाभ होगा, स्पेशली MSME सेक्टर में, कि जिस तरह से GST के दर कम होने की वजह से स्थानीय मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, उसको सरलता से खरीद पाएंगे.
रोहन के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रहेगी. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में श्री ट्रंप ने आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुकता प्रकट की. राष्ट्रपति ट्रंप ने आशा व्यक्त की है कि दोनों महान देशों के लिए सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि भारत और अमेरिका करीबी दोस्त और स्वाभाविक साझेदार हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता से भारत अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं के द्वारा खुलेंगे. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के दल वार्ता को जल्द से निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं. इसराइल की सेना ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के प्रमुख नेताओं को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले की पुष्टि की है। इजरायली रक्षा बल और इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। कतर की धरती पर इसराइल की ये पहली सैन्य कार्रवाई है। इस बीच भारत ने दोहा में इसराइली हमलों के बाद चिंता व्यक्त करते हुए संयम बरतने और कूटनीति से काम लेने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल प्रदेश के बाढ़, भूस्खलन और भारी वर्षा से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान श्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश का दौरा आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत और भरोसा लेकर आया। जमीनी स्तर पर पहुंचकर प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर और राहत कर्मियों का उत्साह बढ़ाकर प्रधानमंत्री ने एक मजबूत एकजुटता का संदेश दिया। प्रभावित परिवारों से मुलाकात के दौरान श्री मोदी ने संवेदनाएं व्यक्त की और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार घरों, स्कूलों, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचे को पुनर्स्थापित करने में हर संभव मदद देगी। प्रधानमंत्री ने NDRF, SDRF, सेना और आपदा मित्र स्वयंसेवकों के त्वरित राहत व बचाव कार्यों में अथक प्रयासों की विशेष तौर पर सराहना की। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
प्रधानमंत्री ने बाढ़ प्रभावित पंजाब को 1600 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। ये राशि राज्य को पहले दिए गए 12000 करोड़ के अतिरिक्त है। इस बीच राज्य में बाढ़ से काफी नुकसान भी पहुंचा है। भारत के पूर्वी और प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में अगले 4 से 5 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में आज और छत्तीसगढ़, बिहार और उड़ीसा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच में अफगानिस्तान ने कल रात अबू धाबी में हांगकांग पर 94 रनों की विशाल जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने निर्धारित 20 ओवरों में 6 विकेट पर 188 रन बनाए। जवाब में हांगकांग 20 ओवरों में 9 विकेट पर 94 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज भारत का सामना मेजबान संयुक्त अरब अमीरात से होगा। उधर एशियाई कप 2026 में भारतीय फुटबॉल टीम ने दोहा में ब्रुनेई को 6-0 से हराकर अपने U23 क्वालिफायर अभियान का समापन किया। भारत 3 मैचों में 6 के साथ ग्रुप एच में दूसरे स्थान पर रहा। वहीं मुक्केबाजी में भारत की निखत जरीन और मीनाक्षी लिवरपूल में विश्व चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। दो बार की विश्व चैंपियन निखत ने महिलाओं के 51 किलोग्राम वर्ग में जापान की युमा निशिनाका को 5-0 से हराया।
और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
धन्यवाद फरहत। नेपाल में प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़ होने का समाचार आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है, धधकता नेपाल, बरसते इस्तीफे, जेन जी आंदोलन के आगे चरमराई सरकार। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नेपाल में नौजवानों ने किया तख्ता पलट, संसद जलाई। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधा कृष्णन के उपराष्ट्रपति होने का समाचार अमर उजाला ने सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, राधा कृष्णन नए उपराष्ट्रपति, विपक्षी खेमे में बड़ी सेंध, 152 मतों से जीत। उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हुए सीपी राधा कृष्णन की तस्वीर अधिकतर अखबारों ने प्रकाशित की है। सोने की कीमत ने रचा इतिहास, पहली बार 1,10,000 रुपए का आंकड़ा कर लिया पार, हरी भूमि की खबर है। प्रधानमंत्री ने लिया बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा, पंजाब के लिए 1600 और हिमाचल के लिए 1500 करोड़ का पैकेज, राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है। हर 3 में से 1 भारतीय की जान ले रही है दिल की बीमारी, रिपोर्ट में दावा, हार्ट अटैक और कैंसर के मामले बढ़े, राजस्थान पत्रिका ने बढ़ा खतरा शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है।
धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा की। भारतीय एयरलाइनों ने काठमांडू के लिए उड़ानें रद्द की। नव निर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने दूसरे सर्वोच्च संवैधानिक पद पर अपने निर्वाचन को राष्ट्रवादी विचारधारा की जीत बताया। भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। इसरो ने कहा, भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण में 9 प्रमुख विश्व रिकॉर्ड हासिल किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक। और इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में शीर्ष हमास नेताओं की हत्या के प्रयास की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।